नमस्कार भारत, आज है 10 सितंबर दिन मंगलवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। मर चुकी है तालिबान के साथ शांति वार्ता, बोले अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप। शांति वार्ता खत्म होना क्या भारत के लिए है राहत की बात?
अमेरिका ने इस वार्तालाप के दौरान अफगान तालिबान को वो स्तर प्रदान कर दिया था जो कि अफगानिस्तान की हुकूमत को भी का नहीं था।
84 के सिख दंगों को लेकर फिर घेरे में आ सकते हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ। बिहार में नीतीश कुमार से बीजेपी की मांग, सीएम की कुर्सी अब बीजेपी को सौंपे।
आपकी उदारता, आपके दया भाव से जितना मोदी जी भी मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो आपका जो पार्टनर बीजेपी है एक बार उसके किसी व्यक्ति को बनने देना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री।
मगर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके लिए अफगान शांति वार्ता मर चुकी है। ट्रंप ने तालिबान से मुलाकात रद्द करने के फैसले के पीछे काबुल में हुए उस कार बम धमाके को जिम्मेदार ठहराया जिसमें एक अमरीकी सैनिक समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। तालिबान ने कहा है कि वार्ता रद्द करने से अमरीका को ही ज्यादा नुकसान होगा। वहीं अफगानिस्तान ने ट्रंप के फैसले का स्वागत किया है। बहामस में हरिकेन डोरियन से भारी तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें प्रशासन की ओर से पर्याप्त मदद नहीं मिल रही है। मार्श बंदरगाह पर फंसे कुछ लोगों ने बताया कि तूफान में हुई मौतों के बाद शवों को हटाने का काम भी ठीक से नहीं हुआ है। इस इलाके का दौरा करके आई इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस की प्रवक्ता जनेल एली ने बीबीसी से बात की।
It was a shocking scene. There were entire neighborhoods flattened. There were roofs twisted by the wind.
एली कह रही थी कि वहां मैंने जो कुछ भी देखा वो सदमे में डाल देने वाला था। पूरा इलाका जैसे तूफान की वजह से सपाट हो गया है और तेज हवाओं ने छतों को तोड़ मरोड़ दिया है। मैंने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। हालांकि यहां राहत और बचाव कार्य भी लगातार चल रहा है। बंदरगाह पर फंसे लोगों को मेडिकल सहायता दी जा रही है और पीने के लिए साफ पानी मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को तत्काल मदद की जरूरत है। ये थे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस की प्रवक्ता जनरल एली के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में 4 नाविक एक बड़ी कार्गो जहाज में फंस गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक आपातकालीन बचाव दल ने इनमें से 3 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन एक व्यक्ति अब भी जहाज में फंसे हुए हैं। सोमवार को जारी हुए नाटकीय वीडियो फुटेज में बचाव दल को फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए जहाज के एक हिस्से में सुराख करते देखा जा सकता है। जहाज के चालक दल के एक सदस्य अब भी शीशे से घिरे हुए इंजीनियरिंग कंट्रोल रूम में फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने की कोशिश जारी है। अमरीकी कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता जॉन रीड ने इस बारे में ज्यादा जानकारी दी।
The condition is relatively good for having spent, you know, 34 or 35 hours.
जॉन रीड बता रहे थे कि हालात अब पहले से बेहतर हैं। हमने पहले जहाज में 3 इंच का सुराख किया। सुराख के जरिए तीनों लोगों तक खाना पानी और थोड़ी ताजी हवा पहुंचाई गई। ये तीनों व्यक्ति जहाज में एक जगह एक साथ बैठे हुए थे और इन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। चौथे शख्स कांच से घिरे इंजीनियरिंग कंट्रोल रूम में अब भी फंसे हुए हैं। हम उन्हें भी बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए विशेषज्ञों की मदद ले रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम उन तक खाना या पानी नहीं पहुंचा सके हैं। ये थे अमरीकी कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता जॉन रीड के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया ने कहा है कि वो अमरीका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण मसले पर एक बार फिर बातचीत करने को तैयार है। दोनों देशों के बीच ये बातचीत पिछले 6 महीने से रुकी हुई है। उत्तर कोरिया की उप विदेश मंत्री चोए सन ही ने कहा है कि दोनों देश इस महीने के आखिर में बातचीत शुरू कर सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी चेताया कि अगर अमेरिका बातचीत शुरू करना चाहता है तो उसे नए प्रस्ताव लेकर आना होगा। उनके इस बयान के कुछ ही देर बाद उत्तर कोरिया ने 2 अज्ञात मिसाइलों का परीक्षण भी किया। इससे पहले रविवार को अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि अगर उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन बातचीत की ओर नहीं लौटते तो ट्रंप बहुत निराश होंगे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लाइव, और मैं हूं अपूर्व कृष्ण। अफगानिस्तान में पिछले 18 साल से छिड़ी जंग कैसे रुके, इसके बारे में अमेरिका और तालिबान के बीच पिछले एक साल से कई दौर की वार्ता हुई थी, और पिछले सप्ताह खबर आई कि बातचीत एक शांति समझौते की ओर बढ़ रही है। अंतिम बातचीत पिछले रविवार को अमरीकी राष्ट्रपति की आरामगाह कैंप डेविड में होनी थी, मगर इसके बस एक दिन पहले अमरीकी राष्ट्रपति ने ट्वीट पर संदेश जारी कर तालिबान नेताओं के साथ मुलाकात को रद्द कर दिया। वजह बताई पिछले सप्ताह काबुल में हुए कार बम धमाके को, जिसमें एक अमरीकी सैनिक समेत 12 लोग मारे गए थे। अमरीकी राष्ट्रपति ने अब व्हाइट हाउस में पत्रकारों को बताया है कि ये वार्ता पूरी तरह से मर चुकी है। ट्रंप कह रहे थे कि ये मर चुकी है, जहां तक मेरा प्रश्न है तो ये वार्ता मर चुकी है। उन्हें लगा कि लोगों को मारने से वो लोग बातचीत में बेहतर सौदेबाजी करने की स्थिति में होंगे, पर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो जहां तक मेरी बात है वार्ता मर चुकी है। इस शांति वार्ता के भंग होने के भारत के लिए क्या मायने हैं? क्या क्षेत्र की स्थिरता और शांति की स्थापना के लिहाज से अब भारत की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, या अमरीकी सेनाओं के वहां टिके रहने से परोक्ष रूप से ये भारत के लिए कोई राहत लेकर आएगा? ये समझने के लिए बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र ने बात की अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रहे विवेक काटजू से।
देखिए, भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता चाहिए। जो ये पूरा सिलसिला हुआ है, जो शांति वार्ता जो भंग हुई है, उससे अफगानिस्तान में वायलेंस हिंसा और भड़कती है, तो वो ना ही अफगानिस्तान के लिए अच्छा होगा, ना ही हमारे खित्ते के लिए। लेकिन एक वो वर्ग है भारत में जो कि ये मानता है कि अमरीका ने इस वार्तालाप के दौरान अफगान तालिबान को वो स्तर प्रदान कर दिया था जो कि अफगानिस्तान की हुकूमत को भी का नहीं था। मसलन तालिबान ने कहा कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत से वार्तालाप करने को तैयार नहीं। अमेरिका ने पहले ये कहा था कि वार्तालाप के सिलसिले से पहले ये कहा था कि अब तालिबान को अगर बात करनी होगी शांति स्थापित करने के लिए, तो वो उनको फिर अफगानिस्तान की हुकूमत से बात करनी होगी। लेकिन ये जो एक अमरीका की कंडीशन थी वो उन्होंने त्याग, इससे यहाँ भी एक भावना थी कि तालिबान को एक तालिबान के साथ जो बातचीत हो रही है उससे अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ नाइंसाफी हो रही है, और इससे अफगानिस्तान में जो भी एक सिलसिला चला है 2001 के बाद से, वो सिलसिले को धक्का लगे, और एक आधुनिक अफगानिस्तान जो उत्पन्न हो रहा है, जिस अफगानिस्तान में ये कोशिश की जा रही है कि डेमोक्रेसी स्थापित हो, डेमोक्रेसी की जड़ें और मजबूत हो, एक मॉडर्न अफगानिस्तान बने, आधुनिक अफगानिस्तान बने, दुनिया के साथ जुड़े, जहां खुशहाली आए, उसको तालिबान के आने से धक्का लगे। तो ये भावना एक यहाँ पे है, और एक ये व्यू है यहाँ भारत में। अगर उस नजरिए से देखा जाए तो लोग समझते हैं कि एक ये जो अग्रीमेंट थी वो अग्रीमेंट ठीक नहीं होती।
क्या ऐसा है कि भारत इस शांति बातचीत को शांति बातचीत से ज्यादा एक विद्रॉल एग्रीमेंट के तौर पे देखता था कि सिर्फ अमरीकी सेनाएं वहां से वापस लौट जाएंगी, और क्या ऐसी आशंकाएं उससे जुड़ी हुई थी कि उनके लौट जाने के बाद वहाँ दोबारा गृहयुद्ध जैसे हालात तो नहीं हो जाएंगे?
देखिए, अब दरअसल अमेरिका का जो मुख्य उद्देश्य है वो तो यही है कि वो अब 18 साल के बाद वो थक गया है और चाहता है कि उसकी सेनाएं वहां से हटें, और उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में वो तब्दील हो एक नॉर्मल एंगेजमेंट में, जिसमें अमरीकी सेना का इतना महत्व ना हो। लेकिन उसके साथ साथ अमरीका ये भी चाहता है कि अफगानिस्तान में कभी ऐसी स्थिति नहीं बने कि जैसे कि 2001 में हुआ, न्यूयॉर्क में जब आतंकी हमला हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिससे 3000 से ज्यादा लोग मरे, जो कि अफगानिस्तान की सरजमी से प्लान हो या फिर एग्जीक्यूट हो, उस वो नहीं चाहता। हाँ, इसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि एक स्थिर अफगानिस्तान हो, लेकिन लोगों का मानना है कि उसका मुख्य उद्देश्य तो फिर अपने हितों को देखना था। तो इससे ये भी आशंका हो रही थी कि अगर वो सिलसिला ठीक नहीं चला तो फिर उसके बाद क्या।
थोड़ा सा और स्पष्टता अगर इस पे लें कि भारत इस शांति वार्ता की सफलता में अपना हित देखता था या अब ये रुक गई है तो ये ज्यादा हितकारी है?
ये इस वक्त कहना मुश्किल है। भारत के जो एक सामरिक वर्ग है उसमें भी एक विभाजन है टीका। अगर आप देखें तो कुछ लोग ये मानते थे कि पाकिस्तान का तालिबान के जरिए प्रभाव बढ़ जाएगा अफगानिस्तान में, तो उससे ये भी भावना एक उत्पन्न हो रही थी कि क्या पाकिस्तान जो भी तालिबान जो तालिबान इंसर्जेंट्स हैं क्या उनमें से कई को फिर कश्मीर भेजने की कोशिश करेगा, जो एक 1990 के दशक में उन्होंने कोशिश की, तो इस पर भी ध्यान था और वो स्वाभाविक है कि ऐसा ध्यान होगा।
ये थे अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत विवेक काटजू। कश्मीर घाटी में आज मुहर्रम के मौके पर सुरक्षा फिर से सख्त कर दी गई है। मुहर्रम पूरा एक महीना होता है, लेकिन इस इस्लामी महीने का 10वां दिन खास होता है, जब हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में जुलूस निकालकर मातम मनाया जाता है। इस दिन को रोजे अशूरा कहते हैं। श्रीनगर में इस दिन लाल चौक से डल गेट तक एक जुलूस निकाला जाता था, मगर चरमपंथी घटनाओं के बाद से 1989 से इस पर रोक लगी हुई है। इस बार क्या है माहौल, ये समझने के लिए बीबीसी संवाददाता शकील अख्तर ने श्रीनगर में बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से बात की।
यहाँ पे तो एक ट्रेडिशन रहा है कि मुहर्रम 8, 9 और 10 को यहाँ बड़े प्रदर्शन होते हैं, जुलूस निकलते हैं, वो लोग अपना अपने हिसाब से मातम करते हैं, जैसा कि शिया आबादी करती है पूरे साउथ एशिया में, तो उसी तरह से करते हैं। लेकिन इससे पहले ही प्रशासन ने घर घर जाकर पुलिस को भेजा था ये कहने के लिए कि यहाँ धारा 144 के अंतर्गत जो भी 4 लोग जमा हो जाएंगे तो उन पर प्रतिबंध होगा, उसको सख्ती से जो है लागू किया जाएगा। लेकिन यह कि एक प्रयास किया गया आदि गुजर से लाल चौक में, वो प्रेस कॉलोनी का निकटतम एरिया है, तो वहां से जुलूस निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें भगा दिया और ये कह दिया कि वो धारा 144 के अंतर्गत किसी को भी जमा होने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।
मुहर्रम की जो परंपरा रही है उसमें कई रोज जुलूस निकलते हैं, काले रंग के झंडे लगाते हैं मातम के तौर पर, गम के तौर पर, तो क्या पिछले दिनों कुछ इस तरह की इजाजत मिली थी शिया बिरादरी को?
जी देखिए, ये तो पारंपरिक तौर पे ही होता रहा है, लेकिन ये है कि 30 वर्ष से आज तक न तो मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति दी गई और ना ही मीलाद, जिसने मीलाद की का जुलूस निकालने की अनुमति दी गई। मीलाद तो सुन्नी मनाते हैं, जो हजरत मोहम्मद का जन्म दिन होता है उसकी याद में वो मनाते हैं, और इसी तरह से इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम के ये 10 दिन मनाए जाते हैं। तो दोनों अवसरों पर प्रशासन की ये रीत चली आ रही है पिछले 30 वर्ष से, जब से यहाँ पे चरमपंथ शुरू हुआ है 1990 से, इसकी कोई भी अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन इन 30 वर्षों में क्या होता था कि छोटे जुलूसों की अनुमति दी जाती थी, आप बड़ी सड़कों पे बड़े जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाती थी, तो लेकिन इस बार मुकम्मल तौर पर पूरी तरह से इसको बंद कर दिया गया और धारा 144 को सख्ती से लागू किया गया। लेकिन जहां तक बैनर्स और झंडू की बात है, उसको लगाने की अनुमति तो दी गई, तो युवाओं को हमने देखा डाउनटाउन एरिया में, लाल बाजार डिडीबल है या इसी तरह से आबी गुजर है लाल चौक, हर जगह आप बैनर देखेंगे, झंडे देखेंगे, लेकिन सड़कों पर किसी तरह की कोई भी गतिविधि शिया बिरादरी को करने की इजाजत नहीं दी गई।
तो फिर ये जो पुराने प्रतिबंध और रुकावटें वापस आ गई हैं, तो क्या स्थिति है ग्राउंड पर, क्या सूरत हाल है?
जी, ग्राउंड पे जब भी दोबारा प्रतिबंधों को लागू किया जाता है तो लोगों को जाहिर है काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, काफी सारी कठिनाइयों को उन्हें फेस करना पड़ता है। यहाँ पे हेल्थ केयर का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि जब प्रशासन को सख्ती लागू करनी होती है, जैसा कि हमने देखा कि 15-20 दिन पहले जब अचानक ये अफवाह उड़ी थी कि हुर्रियत ने यूएन मार्च का आह्वान किया है, तो उस वक्त भी ऐसी सख्तियां की गई थी कि जो बीमार होते हैं गाड़ियों में उन्हें भी जाने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि आज प्रशासन की पॉलिसी ये है कि किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि शिया समुदाय को करने की अनुमति नहीं दी जाए। तो इसलिए इस बार इन सख्तियों को, इन प्रतिबंधों को बहुत ही कड़े रूप से जो है लागू किया जा रहा है।
श्रीनगर से रियाज मसरूर। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए बने विशेष जांच दल ने 7 मामलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। इनमें इन मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी थी और अभियुक्तों के बरी होने की वजह से इन्हें बंद भी किया जाता था, कर दिया गया था। इनमें से एक मामले से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी नाम जोड़ा जाता है। जाहिर है मामलों को दोबारा खोलने के फैसले पर मध्य प्रदेश की राजनीति में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भोपाल से शुरेन नियाजी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को प्रदेश की सत्ता संभाले अभी सिर्फ 8 माह हुए हैं। अभी तक कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी से उनका सामना हो रहा था, लेकिन अब उन्हें एक बार फिर सिख दंगों में उनकी भूमिका को लेकर लगे आरोपों की जांच का सामना करना पड़ेगा। सोमवार को SIT ने पब्लिक नोटिस जारी कर व्यक्तियों और संगठनों से कहा है कि यदि आपके पास दंगों से जुड़ी कोई जानकारी है तो वे SIT से संपर्क कर सकते हैं। SIT की पब्लिक नोटिस के बाद शिरोमणि अकाली दल के निशाने पर कमलनाथ आ गए हैं। शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि सिख दंगों के 2 गवाह कमलनाथ के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन पर लग रहे आरोपों पर उनकी पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा उनका बचाव करते हैं।
35 वर्ष पुराने मामले पे, इस मामले में, सिख दंगों के मामले में कमलनाथ जी के ऊपर आज तक एक भी प्रकरण न्यायालय में विचारधारा नहीं है, एक भी प्रकरण दर्ज नहीं है, एक भी FIR उनके खिलाफ नहीं है। किसी भी न्यायालय आयोग ने उनको आज तक कोई दोषी नहीं ठहराया है। पिछले 35 वर्षों के दौरान वे विभिन्न संवैधानिक जिम्मेदार वाले पदों पर रहे। 35 वर्ष से आरोप लगाने वाले कहाँ थे, ये गवाह कहाँ थे, यह सब वर्तमान में एक साजिश व षड्यंत्र के तहत हो रहा है। जिस प्रकार से देश में चुन चुनकर कांग्रेस के नेताओं, विपक्षी नेताओं व गैर भाजपाई सरकारों को निशाना बनाया जा रहा है।
उधर विपक्षी भाजपा को भी इस मामले से एक नया मुद्दा प्रदेश सरकार के खिलाफ मिल गया है। भाजपा का मानना है कि इस मामले में सही जांच कभी भी नहीं हुई है। भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल कहते हैं कि सिख दंगे देश के लिए कलंक थे और इसमें दोषियों को सजा दिलाने के लिए जांच जरूर की जानी चाहिए।
दशक बीत गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो आरोपी हैं वो बरी कर दिए गए, छोड़ दिए गए, और जिसको जस्टिफाई स्वयं कांग्रेस के तत्कालीन नेता और प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी ने भी करने का काम किया कि जब एक पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यानी उसकी प्रतिक्रिया हुई, जो संघार हुआ उसको उन्होंने तर्क संगत ठहराने की कोशिश की। और अगर कमलनाथ जी पर कोई आरोप रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसकी जांच पड़ताल गहराई के साथ में व्यापक तौर पर होनी चाहिए। प्रत्यक्षदर्शियों के जो बयान है उसके आधार पर भी, जो और भी प्रकार के साक्ष्य हों उसके आधार पर जांच होकर और न्याय मिलना ही चाहिए, जो हजारों लोग मारे गए उनको भी।
सिख दंगों को लेकर कमलनाथ हमेशा ही विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी इन दंगों में कमलनाथ की भूमिका का मामला भाजपा ने उठाया था, लेकिन अब तक वह बचते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेसी नेता केंद्र सरकार के निशाने पर हैं, इसलिए पार्टी के अंदर ही कुछ लोग मान रहे हैं कि उनके लिए आने वाला वक्त मुश्किल भरा हो सकता है। शुरह न्याजी, BBC न्यूज, भोपाल।
गृहमंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी शहर में कहा है कि भारत में एक भी घुसपैठिए को नहीं रहने दिया जाएगा। उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC के मौजूदा स्वरूप को लेकर खुद असम की भाजपा इकाई की ओर से चिंताओं के स्वर उठे हैं। अमित शाह के इस बयान ने क्या वहाँ लोगों की चिंताओं को और गहरा दिया है? गुवाहाटी से दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
भारत के गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार असम के दौरे पर आए अमित शाह को उनकी ही पार्टी यानी भाजपा के नेताओं ने NRC की फाइनल लिस्ट में त्रुटियों को लेकर एक मेमोरेंडम दिया है। असम प्रदेश भाजपा के नेताओं ने इस मेमोरेंडम के जरिए गृह मंत्री को सूचित किया है कि 31 अगस्त को पब्लिश हुई NRC की फाइनल लिस्ट में कई वास्तविक भारतीयों के नाम कट गए हैं और कई अवैध नागरिकों के नाम NRC में शामिल कर लिए गए हैं। पार्टी नेताओं से मिली शिकायत के बाद सोमवार को एक बार फिर गृहमंत्री अमित शाह ने NRC पर कहा,
सारे राज्यों ने और विशेषकर आसाम ने NRC के लिए चिंता व्यक्त, दोनों की चिंता अलग अलग है। इनको लगता है कि NRC के अंदर काफी लोग छूट गए हैं और गहनता से NRC का काम होना चाहिए। छोटे छोटे राज्यों की चिंता है, यहाँ से जो निकलते हैं वो हमारे यहाँ न आ जाए। मगर मैं दोनों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, एक भी घुसपैठिया आसाम के अंदर रह भी नहीं पाएगा और दूसरे राज्य में घुस भी।
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में NRC की पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई है। ऐसे में NRC की पब्लिश हुई फाइनलिस्ट को लेकर भाजपा नेताओं की शिकायत पर सवाल उठाते हुए असम के पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई ने BBC से कहा,
NRC कौन बना है? ये तो होम मिनिस्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। NRC आज होम मिनिस्ट्री बनाया, चुप है। आज वो एक करेक्ट नहीं बन रहा है, उसका लिए फेलर किसका है? अमित शाह का फेलर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, होम मिनिस्ट्री का है, ये पार्टी क्या बोल रहा है?
NRC की फाइनल लिस्ट में 19 लाख से अधिक लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया है। इनमें लाखों संख्या में हिंदू बंगाली लोगों के नाम मौजूदा एनआरसी में नहीं है, जो कि भाजपा का यहां मजबूत वोट बैंक माना जाता है। एनआरसी की फाइनल लिस्ट से बाहर हुए हिंदू बंगाली समुदाय से आने वाले जयदेव भट्टाचार्य अपनी नाराजगी कुछ इस कदर व्यक्त करते हैं।
देखिए, मेरा जो पिताजी का कागज था 1947 में नौकरी घुसा था और रिटायर हो गया आपका 1981 में, तो ये जो कागज दिया मेरा पिताजी का सर्विस सर्टिफिकेट, वो हम प्रोड्यूस किया था। वो सेम कागज हम हमारा भाई को दिया था, मेरा बड़ा जीजी को दिया था, तो बहन को दिया था, तो वो लोग को आ गया नाम, मेरा भैया के भी नाम आ गया, भैया का परिवार को नाम आ गया, लेकिन मेरा मेरा लड़का का नाम नहीं आया ये कागज में, सबको है लेकिन मेरा परिवार का नाम नहीं है।
वहीं बढ़ई का काम कर अपना गुजारा करने वाले 50 साल के सुखचंद सरकार पैसों की तंगी के कारण विदेशी ट्रिब्यूनल जाना नहीं चाहते।
गरीब मनुष्य है, हम तो कैसे करेगा, हम तो कोर्ट में जाने से पैसा भी नहीं देने सकेगा। हमारा तीन लड़का, दो लड़का को आया है, हमारा बीवी का आया है, हमारा नहीं आया।
केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद एनआरसी में इतनी गलतियां कैसे रह गई? इस सवाल का जवाब देते हुए असम प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रमोद स्वामी कहते हैं,
जैसे कि हमने भी एफिडेविट दिया था भारतीय जनता पार्टी की और असम सरकार ने कि 20% जो है बॉर्डर इलाके में रीवेरिफिकेशन हो, तो कोर्ट भी उस चीज के लिए एग्री था और कोर्ट ने कहा था कि ठीक है, अगर जरूरत हो तो आप 20% रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अचानक कोई नोटिस जारी नहीं किया कि हाँ भाई मैं 3 तारीख को रीवेरिफिकेशन करने जा रहा हूँ।
असम में एनआरसी को अपडेट करने का एकमात्र मकसद अवैध विदेशी नागरिकों की शिनाख्त कर उन्हें यहाँ से बाहर करने का था, लेकिन एनआरसी की फाइनल लिस्ट पब्लिश होने के बाद भाजपा, कांग्रेस समेत राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से प्रतिक्रियाएं देती आ रही है, उससे भले ही किसी को फायदा हो या ना हो, लेकिन ऐसा लगता है गरीब और अनपढ़ लोग एनआरसी की जटिल प्रक्रियाओं में जरूर उलझते जा रहे हैं। दिलीप कुमार शर्मा, BBC असम।
और अब आइए निगाह डालें आज के अखबारों पर। अखबारों के साथ सिंधु वासनी स्टूडियो में है। जी सिंधु,
अपूर्व चंद्रयान 2 और विक्रम लैंडर अभी भी अखबारों की सुर्खियां लगातार बने हुए हैं। दैनिक जागरण लिखता है कि चांद पर गिरा है विक्रम लैंडर लेकिन टूटा नहीं। अमर उजाला का शीर्षक है विक्रम सलामत, चांद पर गिरकर टूटा नहीं। अखबारों ने इसरो के हवाले से लिखा है कि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर जाके तिरछा हो गया है, मगर वो साबुत है और टूटा नहीं है और लगातार इससे संपर्क साधने की कोशिश हो रही है, उम्मीद अभी भी बाकी है। इसी उम्मीद पर जनसत्ता का एक कार्टून है जिसमें एक शख्स अपने दोस्त से पूछ रहा है कि चांद पर क्या है, पानी, मानव या जीवन, और उसका दोस्त जवाब दे रहा है कि उम्मीदें। इसके अलावा दैनिक जागरण समेत कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर RSS के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले का बयान छापा है। उन्होंने कहा है कि जब तक जाति आधारित आरक्षण की ज़रूरत महसूस हो तब तक इसे जारी रखा जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर, जलाशय और श्मशान सबके लिए खुले हों, इसमें किसी तरह का भेदभाव न हो। अमर उजाला की सबसे बड़ी खबर है कि वाहनों की बिक्री में 22 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 10 महीनों से लगातार कारों की बिक्री घट रही है और ऑटो सेक्टर में 23.55% की गिरावट दर्ज की गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है और इसकी रिपोर्ट कहती है कि अगस्त महीने में कारों की बिक्री में 41% की कमी आई है। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर एक रिपोर्ट है जो कहती है कि झारखंड पुलिस ने तबरेज लिंचिंग मामले में दायर की गई अपनी चार्जशीट से हत्या का आरोप हटा लिया है और तर्क ये दिया है हत्या का आरोप हटाने के पीछे कि जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार तबरेज की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी, ना कि मारपीट से। 22 साल की तबरेज को 18 जून को झारखंड में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। उन्हें चोरी के आरोप में खंभे से बांधकर कई घंटों तक पीटा गया था जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी और इस पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुआ था।
इस खबर की काफी चर्चा हुई थी उस समय
जी। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा का कहना है कि चिन्मयानंद ने उसके साथ 1 साल तक बलात्कार किया और उनके पास ये साबित करने के पर्याप्त सबूत हैं। छात्रा ने कहा है कि वक्त आने पर वो सारे सबूत SIT को देंगे।
हाँ, इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें आरोप कई तरह के उन्होंने लगाए थे।
एक और खबर टाइम्स ऑफ इंडिया से ही, महाराष्ट्र सरकार ने मेडिकल के उन छात्रों के लिए 10-20% का आरक्षण रखा है जो 5-7 साल तक गाँव में जाकर प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं और राज्य सरकार जल्दी ही इस बारे में एक विधेयक भी पेश करेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया सिंधु अखबारों की समीक्षा के लिए। चर्चा करते हैं बिहार की, जहां विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है लेकिन इससे जुड़े बयान आने शुरू हो गए हैं। बिहार में जेडीयू और भाजपा गठबंधन की सरकार है, मगर पिछले चुनावों की तरह इस बार भी चुनावी नारों के केंद्र में नीतीश कुमार ही नजर आ रहे हैं। लेकिन अब भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य संजय पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार ने 15 साल सत्ता संभाली है और इस बार उन्हें भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। पटना से नीरज प्रियदर्शी।
नीतीश कुमार का नारा, बीते 15 सालों में नीतीश कुमार के नाम से बिहार में कई नारे बने हैं। पहले बना अब की बार नीतीश कुमार, फिर बना बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, और इस बार नया नारा है क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। जदयू हर बार विधानसभा चुनाव के पहले एक नया नारा लेकर आती है जिसका चेहरा होते हैं नीतीश कुमार। इस बार भी चेहरा नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन जदयू के लिए मुसीबत ये है कि सरकार में गठबंधन की सहयोगी पार्टी बीजेपी अब चेहरा बदलने की मांग कर रही है। ये मांग की गई है बीजेपी के एक सीनियर नेता संजय पासवान की ओर से। स्थानीय मीडिया में दिए गए पासवान के इस बयान पर कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनने का एक मौका बीजेपी को देना चाहिए और खुद केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, बीबीसी ने उनसे बात की।
हर लोग इच्छा है कि भैया भाजपा कब मुख्यमंत्री बनाएगा, अपना भाजपा कब बनाएगा मुख्यमंत्री। तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, कोई फिलंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। तो एक बार हमने उनसे आग्रह किया है कि आप इतने उदार आदमी है नीतीश बाबू, कि आपकी उदारता आपके दया भाव से जितना मोदी जी भी मुख्यमंत्री हो जाते हैं, तो आपका जो पार्टनर बीजेपी है जिसका नेता नरेंद्र मोदी है, एक बार उसके किसी व्यक्ति को बनने देना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री।
बिहार में भाजपा से किसी बड़े नेता ने पहली बार गठबंधन में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनने के लिए कहा है, जबकि जदयू हमेशा से नीतीश कुमार को गठबंधन का निर्विवाद नेता कहती रही है। संजय के इस बयान को जदयू किस तरह देखती है और गठबंधन के भविष्य को लेकर पार्टी का क्या कहना है, यह पूछा हमने जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन से।
देखिए, सबसे पहले इस बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। संजय पासवान पार्टी के स्टैंड को रखने के लिए अधिकृत नहीं है और कई पार्टियों से निकल करके वो आए हैं। ऐसे बयानों के जरिए कई बार राजनीतिक लोग अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी एनडीए के निर्विवाद नेता हैं। उनके नेतृत्व में राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में 223 में एनडीए को पिछले लोकसभा चुनाव में बढ़त दी है। इस जीत को दोहराना है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2020 में। एनडीए का सुविचारित निर्णय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला चुनाव हम लड़ेंगे, इसलिए ऐसे बयानों का कोई अर्थ।
संजय पासवान के बयान को भले जदयू यह कहकर खारिज कर दे कि ये उनका निजी बयान है, मगर विपक्ष को इससे नीतीश कुमार पर हमला करने का एक मौका मिल गया है। पासवान का बयान आने के तुरंत बाद प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि क्या सीएम भाजपाइयों की बात का खंडन करने का मादा रखते हैं। बीते दिनों में भाजपा और जदयू के नेताओं की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी हुई है, यह कहना बहुत मुश्किल हो गया है कि बिहार में भाजपा और जदयू का गठबंधन कब तक चलेगा। मगर एक बात तय है कि अगर संजय पासवान के बयान को बीजेपी अपना आधिकारिक बयान मान लेती है तो गठबंधन टूटने की कगार तक जरूर पहुंच जाएगा। नीरज प्रियदर्शी, बीबीसी पटना।
और सभा समाप्ति से पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके लिए अफगान शांतिवार्ता मर चुकी है। ट्रंप ने तालिबान से मुलाकात रद्द करने के फैसले के पीछे काबुल में हुए उस कार बम धमाके को जिम्मेदार ठहराया जिसमें एक अमरीकी सैनिक समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। बहामस में हरिकेन डोरियन से भारी तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें प्रशासन की ओर से पर्याप्त मदद नहीं मिल रही है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण मसले पर एक बार फिर बातचीत करने को तैयार है। दोनों देशों के बीच ये बातचीत पिछले 6 महीने से रुकी हुई है। उत्तर कोरिया की उप विदेश मंत्री चोए सन ही ने कहा है कि दोनों देश इस महीने के आखिर में बातचीत शुरू कर सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी चेताया कि अगर अमेरिका बातचीत शुरू करना चाहता है तो उसे नए प्रस्ताव लेकर आना होगा। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी सिंधु वासिनी। इसी के साथ नमस्कार भारत का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया दीपक जसरोटिया ने। तो अब सभी सहयोगियों के साथ अपूर्व कृष्ण को दीजिए अनुमति। नमस्कार।